आहान के इमोशंस। इससे पहले आस्था अपने शब्दों को पूरा कर पाती, उससे पहले आहान आस्था के गले से लग गया और एकदम से बोला, भाभी, मुझे लगा था कि मैं रौनक से ज्यादा इस दुनिया में किसी भी लड़की को प्यार नहीं करूंगा, लेकिन जब से मैंने मेरी बेटी को देखा है, तब से मुझे लगा मेरी सांसें रौनक में नहीं बल्कि मेरी बेटी में बसती हैं, मेरी बेटी में। अब आगे, भाभी, मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया कि रौनक के सामने कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैं ऐसे बिहेव करने लगा। पर मुझे नहीं पता था कि रौनक मेरे इस रिएक्शन का गलत मतलब निकालेगी और मुझे छोड़कर मेरी बेटी को साथ में लेकर यहां से जाने का फैसला कर लेगी। आहान की आवाज़ ये सब कहते हुए लड़खड़ा रही थी। किसी अनचाही अनहोनी के होने के ख्याल ने उसके दिमाग को सुन कर दिया था और उसकी आंखों में रौनक और अपनी बेटी के लिए बेहद इमोशंस भरे हुए थे। अब जैसे ही रौनक ने आहान के मुंह से ये शब्द सुने तो वैसे ही उसके दिल में जमा हुआ गुस्सा अचानक छट गया। उसे अब अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा था। उसने सच में आहान का दिल दुखा दिया था। अब उसका दिल भीतर से खून के आंसू रो रहा था। वहीं आस्था ने तुरंत आगे बढ़कर रौनक के कंधे पर हाथ रखा और फिर जल्दी से उसे आहान के करीब खड़ा कर दिया ताकि वो दोनों अपने बीच के गिले शिकवे मिटा दे। रौनक भी अब खुद को रोक नहीं पाई और एक कदम में उसने आहान कसकर गले से लगा लिया था। अब उसके दिमाग में चल रहे कन्फ्यूजन और डाउट खत्म हो गए थे और अगले ही पल उसका दिल पूरी तरह हल्का फुल्का हो गया था और उसने आहान के कंधे पर सिर रखकर बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। उन दोनों का दिल अपने भीतर उमड़ रहे इमोशंस के तूफान से जूझ रहा था। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर सभी लोगों की आंखें भर आई थीं। वहीं ध्रुव, जो इस वक्त की पूरी तरह इमोशन से भर चुका था और ऊपर से पहली बार आहान ने उस पर हाथ उठाया था तो थप्पड़ के असर से वो थोड़ा डबल इमोशनल हो गया था। रौनक को रोते हुए देखकर नानी माँ आस्था के कानों में धीरे से फुसफुसाई, बेटा, रौनक बिटिया का इस हालत में ज्यादा देर तक रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएंगी क्योंकि इस वक्त उसका शरीर काफी कच्चा है, अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है। नानी माँ की इस बात पर आस्था का चेहरा हल्का सा बदला। उसने तुरंत ही रौनक को चिंतित होकर देखा। जल्दी से उसने सिचुएशन संभालते हुए रश्मि को कुछ इशारा किया। रश्मि ने तुरंत आगे बढ़कर रौनक को चंचलता से सहलाया और उसे चुप कराते हुए बोली, शांत हो जाओ रौनक, मैंने तुमसे कुछ दिन पहले पूछा था ना कि अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दो। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी दीदी से भी बातें छुपाने लगी हो और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हम सबको छोड़कर चली जाओगी। ये बोलकर रश्मि ने बड़े ही प्यार से रौनक को डांटा। रश्मि के मुंह से अपने लिए शिकायत सुनते ही रौनक का चेहरा अचानक ठिठक गया और वो थोड़ा हड़बड़ा गई थी और अगले ही पल वो तुरंत अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी रश्मि दीदी, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन इसमें सारी गलती तो इस छछुंदर की है। ये इतना सीरियस हो जाएगा मुझे क्या पता था, इसका इतना सीरियस बिहेव करना जरूरी था क्या? अब रौनक ने जैसे ही मुंह फुलाते हुए आहान की शिकायत करनी शुरू की तो आहान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था। और तभी अचानक आहान की नज़र अब ध्रुव पर पड़ी, जो मुंह बनाकर एक साइड खड़ा हुआ था। अब जल्दी से आहान ध्रुव के पास गया और हिचकिचाते हुए बोला, सॉरी यार, गलती से तुझ पर हाथ उठा दिया, आई एम सो सॉरी। इस पर ध्रुव मुंह बनाते हुए बोला, जस्ट शट अप, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? तू पागल हो गया था क्या? हमें तो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ आहान पसंद है, समझा? और अब बंद कर ये अपना सीरियसनेस वाला चैप्टर। एक और बात, तू अपनी बेटी को बॉक्सर बना, रेसर बना, जो चाहे मर्जी वो बना, तेरी बेटी भी सब कुछ बन सकती है, समझ गया ना? और सुन, मैं तो उसे डॉक्टर ही बनाऊंगा, समझा? ध्रुव की इस बात पर आहान मुस्कुरा दिया और एकदम से एक्साइटेड होकर बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी एक शहजादी है, शहजादी, और मैं उसे एक प्रिंसेस की तरह ही पालूंगा। आहान के कहे शब्दों को सुनकर सभी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे खुश देखकर उन सबकी आंखों की चमक हजार गुना बढ़ गई थी। तभी ध्रुव ने आंखों से उसे कुछ इशारा किया जिसे आहान कुछ असमंजस में पड़ गया। तभी आहान ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि सभी की पलकें भींगी हुई थीं। आहान ने मन ही मन खुद से शिकायत की, आज उसकी वजह से घर के सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। उसे वहां के माहौल तनाव महसूस हो रहा था। इसीलिए देर न करते हुए आहान ने रूठने का नाटक किया और रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और एकदम से उसे घूरते हुए बोला, ए हवा हवाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और साथ में मेरी प्रिंसेस को भी अगवा करके लेकर जाओगी? कोई है, पकड़ो इसे, ये हवा हवाई मेरे बच्चे को किडनैप करके लेकर जाना चाहती है और मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती है, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर आहान ने इमोशनल होने का नाटक किया और रौनक पर झपटते हुए उसके बालों पर टूट पड़ा और उसके बालों को खींचने का दिखावा करने लगा। जब रौनक ने देखा कि आहान के चेहरे पर शरारती मुस्कान है तो वो सब कुछ समझ गई। उसने भी एक्टिंग जारी रखी और मदद की गुहार लगाते हुए नानी माँ की ओर देखा। इस पर नानी माँ तुरंत आगे आई और आहान की पिटाई करने लगी और उस पर भड़क गईं। अरे बदमाश, छोड़ दे, उसके बाल कमजोर हो जाएंगे, वो कमजोर है इस वक्त। नानी माँ की बड़बड़ सुनकर सभी हंसे बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था जैसे माहौल में छाई टेंशन कुछ हद तक कम हो गई थी।
फिर आहान ने बेचारा समूह बनाते हुए नानी माँ की ओर उदासी से देखा और जल्दी से बोला, नानी माँ आपने मुझे बोला था कि एक महीने तक मुझे इसके आसपास नहीं भटकना है, लेकिन मैं अब अपनी हवा हवाई और अपनी प्रिंसेस के बिना एक मिनट भी नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को ये चुपके से मेरी बेटी को लेकर निकल लें तो फिर मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये बोलकर आहान ने जल्दी से अपनी प्रिंसेस को गोद में लिया और सीधे अपने कमरे की ओर भाग गया। आहान का ये बिहेवियर देखकर रौनक खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। रौनक के लिए तो ये जैसे मनमांगी मुराद पूरी होने जैसा था। वो मन ही मन ठहाके लगा रही थी। वाकई में उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ जो उतर गया था। राधिका ने मुस्कुराकर सुमित की ओर देखा। आज राधिका के चेहरे पर एक सुकून था। ये सुकून इसलिए था क्योंकि आज दिन में रश्मि राधिका को उसके पूरे ट्रीटमेंट और चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गई थी, और वहीं पता चला था कि राधिका चाहे तो बच्चा कंसीव कर सकती है, वो माँ भी बन सकती है। हाँ, प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन आजकल डॉक्टर के पास हर इलाज मौजूद है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। राधिका ने भावुक होते हुए रश्मि को गले से लगा लिया और उसने ये बात सुमित को भी बता दी थी। सभी की आंखों में एक जबरदस्त चमक थी और अगले ही पल उनके चेहरे से परेशानी गायब हो चुकी थी। अरमान ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कन अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। अपने हंसते खेलते परिवार को एक साथ देखकर मानो जैसे अरमान के बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। इस सुकून का एहसास उसे पहली बार हो रहा था कि परिवार में रहने का सुख क्या होता है, वो आज इसे महसूस कर रहा था। उसे डर था कहीं वो इमोशंस की इस लहर में बह ना जाए, इसीलिए उसने खुद को संभाला, बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा। असल में उसका इरादा चुपचाप वहां से निकलने का था, और वैसे भी काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए थे। अब दूसरी ओर संजना अपने घर में गुस्से से बैठी थी, और इस वक्त उसके सामने वसुंधरा और वीर पूरी तरह घबराए हुए बैठे थे।
जी हाँ, वसुंधरा और वीर कहीं और नहीं बल्कि संजना के घर पर ही थे। संजना उन्हें अपने साथ सीधे घर ले आई थी। आज संजना की अरमान के सामने खूब बेइज्जती हुई थी। इस वक्त वो गुस्से में पागल हो गई थी। ये शेरनी के मुंह से शिकार छिनने जैसा था, और अब वो अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन वसुंधरा और वीर पर उतार रही थी। वसुंधरा और वीर की हालत काफी खराब थी। उनका चेहरा ऐसा था मानो उनकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई हो। उनका दिल धक सह रह गया था। वीर ने सोचा था कि संजना के साथ रहने से उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर उसे क्या पता था कि संजना अपने गुस्से और नफरत की आग में आज उनके साथ इतना कठोर व्यवहार करेगी। उसने घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर रख दिया था, साथ ही वीर की धमाकेदार धुलाई भी कर दी थी। वीर की आंखों में गुस्सा था, पर वो बेबस था। उसे अपने दादाजी और अभिमान की याद आने लगी थी। वो सोच रहा था कि सिंघानिया मेंशन में रहना उसके लिए कितना बेहतर था, लेकिन उनकी लालच में सब बर्बाद हो चुका था। वसुंधरा का खोया हुआ प्यार भी अभिमान के करीब जाते हुए थोड़ा लौटा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां कर दी थीं कि जिसकी कोई माफी नहीं थी। उसने अरमान की सारी जमीन जायदाद भी अपने नाम करवाने की कोशिश की थी, ताकि उस मेंशन में उसे नौकरों की तरह ना रहना पड़े, लेकिन उसका इरादा कभी किसी को घर से निकालने का नहीं था। किसी अनचाही अनहोनी के होने के ख्याल ने उनके दिमाग को सुन कर दिया था। अब संजना वसुंधरा को गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैंने सोचा था कि मैं आस्था के पति के साथ रिश्ता कायम करूंगी और उसे अपने सामने तड़पते हुए देखूंगी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। भले ही राजवीर ने मुझे मना कर दिया हो कुछ भी करने से, लेकिन मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ, और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि अब तुम दोनों मेरा हथियार बनोगे। अब तुम दोनों सिंघानिया मेंशन में जाओगे और वहां जाकर आस्था को खत्म कर दोगे। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये सुना तो वैसे उसकी आंखें पूरी तरह हैरत से भर गई थीं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में बह रहा खून अचानक जम गया हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जैसे वो ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कितनी ही दिनों तक वो सिंघानिया मेंशन में रही थी, लेकिन नानी माँ, रौनक, रश्मि सभी ने मिलकर उसे हर तरह से परेशान किया था, हर तरह से काम लिया था। लेकिन आस्था ने हमेशा इस बात का एहतियात रखा था कि वसुंधरा ने उसके पति को जन्म दिया था, तो वो चाहकर भी कभी उसके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर पाई थी। फिलहाल जैसे ही उसे पता चला कि संजना आस्था की जान लेना चाहती है, तो वसुंधरा की आंखें डर और हैरानी से फटने को आ गई थीं, और वो घबराई आवाज में बोली, लेकिन मैं उसकी जान कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी सिंघानिया मेंशन वाले हमें घर में बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे। वे नहीं चाहते कि हम उनके आसपास भी भटकें, और अगर मैं वहां जाऊंगी तो उन्हें जरूर मुझ पर शक हो जाएगा, और अगर मैं पकड़ी गई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। वसुंधरा ने ये बात सुझाव की तरह नहीं बल्कि फैसले की तरह कही थी, जिसे सुनकर संजना अचानक एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोली,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आस्था की जान किस तरह से लेनी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैंने अपना दूसरा प्लान ऑलरेडी तैयार कर लिया है और कल के कल ही मैं आस्था को अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम कर चुकी हूँ। लेकिन अगर इस बार भी आस्था मेरे वार से बच जाएगी तो तुम्हें आस्था को अपनी ममता के जाल में बहला फुसला कर उसे खत्म करना होगा, और इसमें तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारा ये निकट्टू बेटा वीर। उसके मुंह से ये जहरीली बातें सुनकर वीर और वसुंधरा दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे थे और उनकी घबराहट और दिल की धड़कनें डबल डबल स्पीड से चलने लगी थी। वहीं संजना तो अपना फरमान सुनाकर गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई थी। उधर दूसरी ओर अरमान का सरदर्द अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो मन ही मन इस गहरी सोच में डूबा हुआ था कि याददाश्त जाने के बाद जब उसने नानी माँ को धक्का दिया था तब किस तरह आस्था ने उस पर हाथ उठाया था और किस तरह से वो आस्था को बात बात पर बेइज्जत किया करता था और कैसे आस्था बिना डरे डटकर उसका सामना किया करती थी। आज आहान की बातें सुनकर अरमान का दिल अजीब सा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में कोई नगाड़े बजा रहा हो। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, क्या वाकई ये लड़की मेरे परिवार के लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखती है? अरमान के चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। उधर आस्था अंश को अपने साथ लेके अरमान के कमरे में आ गई थी। वैसे भी वो आहान को अंश नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था अब आहान को रौनक और अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहिए।